नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। युधिष्ठिर जी महाराज को सब प्रकार का ज्ञान देने के बाद भगवान द्वारिका के लिए विदा हो गए और सभी पांडवों ने, हस्तिनापुर वालों ने आत्मीयता के साथ विरह पूर्वक कृष्ण को विदा कर दिया और अश्वमेधिक पर्व वो समाप्त हो गया। जन्मेजय ने पूछा कि मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव, प्रपितामह परदादा, जन्मेजय का बाप परीक्षित, परीक्षित का बाप अभिमन्यु, अभिमन्यु के बाप अर्जुन वगैरह सभी, तो परदादा हो गए। तो मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे, राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे, उनका ऐश्वर्य छिन गया था, ऐसी अवस्था में वे यशस्विनी गांधारी देवी के साथ किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे प्रपितामहों ने कितने समय तक राज्य का उपयोग किया, उपभोग किया, ये सब बातें बतलाने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, महात्मा पांडव राज्य पा लेने के बाद राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर पृथ्वी का पालन करते थे, विदुर, संजय, युयुत्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार सब काम किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते, कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। पांडव भी स्नेहवश, धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे जाकर सब काम देखा करते थे। कुंती सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। सुभद्रा, द्रौपदी तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों के समान भाव से सेवा करती थी। राजा धृतराष्ट्र बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास के भांति गांधारी की सेवा करती थी। महान धनुर्धर कृपाचारी उस समय राजा धृतराष्ट्र के पास रहते थे। भगवान वेदव्यास भी प्रतिदिन उनके पास आकर बैठते और प्राचीन ऋषि, देवर्षि, पितर राक्षसों की कथा सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी देखा करते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुत बड़े बड़े प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्य को भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे, किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी नहीं कहते। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले के भांति रसोइये के काम में निपुण आरालिक, सूपकार, राग खांडविक मौजूद रहते थे। रसोइयों के भेद हैं ये आरालिक, माने अरा नाम के शस्त्र से जिन साग सब्जियों को सुधारा जाए उसका नाम आरालिक, उसको सुधारने वाले रसोई का नाम आरालिक। सूपकार माने दाल आदि तरल पदार्थों को बनाने वाले वो सूपकार, और राग खांडविक माने पीपल सौंठ और शक्कर मिलाकर मूंग का रसा तैयार करने वाले रसोइये वो राग खांडविक कहलाते। पीपल सौंठ शक्कर मिलाकर मूंग का रसा तैयार करने वाले पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो राजा वहां एकत्रित होते थे वे सबसे पहले धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या, उलूपी, चित्रांगदा, दृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी के भांति लगी रहती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने भाइयों को प्रतिदिन शिक्षा देते रहते थे कि देखो धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ हुआ है, तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव नहीं करना, कोई ऐसी चुभती बात मत कहना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो जाए। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए में जो अनर्थ हुआ, द्रौपदी का जो अपमान हुआ, दुर्योधन ने जो जो बर्ताव किया वो सब धृतराष्ट्र की खोटी बुद्धि का परिणाम है। ये बात उसके हृदय से निकली नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने कई बार भीमसेन को समझाया कि भीमसेन भूतकाल होता ही भूलने के लिए है, जो हो गया सो भूल जाओ। भीमसेन कहता मेरे अंदर आग लगी हुई है, मैं क्या कर सकता हूं। इस प्रकार पांडवों से भलीभांति सम्मानित होकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पहले से ज्यादा सुखी थे। ऋषियों के साथ गोष्ठी करते, सत्संग करते और दूसरे काम में समय नहीं लगाते। ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तु का दान करते। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उनके लिए सारा खजाना खुला कर रखा था। युधिष्ठिर के मन में क्रूरता का नामो निशान नहीं था, वे सदा प्रसन्न रहते और भाइयों से कहते रहते थे और मंत्रियों से भी कहते कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप सभी लोगों के लिए माननीय है, जो इनकी आज्ञा में रहेगा वो मेरा सुहृद होगा, जो इनके विपरीत चलेगा वो मेरे दंड का भागी होगा। पिता पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों तथा हितेशियों के श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना खर्च करना चाहते थे उतना कर सकते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े धृतराष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दे, ऐसा पांडवों के मन में विचार रहता था। अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे तो इनको मिलते ही थे, उससे ज्यादा ही पांडवों ने पूरा प्रबंध किया। इस प्रकार के शील बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी परम विनीत, अपने आज्ञानुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता के भांति उनके ऊपर कृपा रखते थे। गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छानुसार धन दान दिया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गईं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्बर्ताव देखकर अब अंबिकानंदन धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबल की पुत्री गांधारी देवी भी अपने सगे पुत्रों से भी बढ़कर पांडवों के साथ स्नेह रखती थी। राजा धृतराष्ट्र तथा तपस्विनी गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वो सारा कार्य पूर्ण कर देते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद कर करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान संध्या गायत्री जप से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद देते थे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर अग्नि में हवन करने के पश्चात ये शुभ कामना करते थे कि मेरे पुत्र पांडव सदा दीर्घजीवी हों। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी प्राप्त नहीं हुई। युधिष्ठिर अपने सद्बर्ताव के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी के प्रिय हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो बुराई की थी उसको भूल गए और धृतराष्ट्र की सेवा में रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। सारे महल में भूतकाल की कोई चर्चा नहीं होती थी। राजा धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे। किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं होता था। धृतराष्ट्र को भी और गांधारी को भी, यद्यपि भीमसेन ने भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र को वचनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन धृतराष्ट्र को जब देखते थे तो भीमसेन की भुजाएं फड़कती, होठ फड़कते और उनके अंदर दुर्भावना जागृत हो जाती थी। राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव देखकर वे स्वयं भी ऊपर ऊपर से अनुकूल बर्ताव करते थे। कौन? भीमसेन। लेकिन उनका हृदय धृतराष्ट्र से एकदम विमुख रहता था। किसका? भीमसेन का। आड़ू लट। वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारंपरिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने भी कोई अंतर आता नहीं देखा, परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा देते थे। कहते कुछ नहीं, ऐसे ही बुड्ढा बकता रहता है, ऐसे करके उनकी आज्ञा को भंग करवा देते। एक दिन की बात है, भीमसेन क्रोध में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच कठोर वचन कहने लगे। सुनते हो भाइयों, मेरी भुजा परिक के समान है, घोटा परिक के समान सुदृढ़ है। मैंने ही इस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो मित्रों, ये मेरे दोनों भुजदंड जो परिक को भी मात करने वाले हैं और दुर्धर्ष हैं, इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। ऐसे वो अपने मित्रों के बीच में बोलकर उन तक आवाज में बोलते थे ताकि उनके कान में ये शब्द जाए। भीमसेन की यह कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा खेद होता था। समय के उलटफेर को समझने लगे कि भाई आज इनका समय है, मैंने इनको बहुत दुख दिया था, क्या करें, अब समय बदल गया। ऐसा समझ करके वो कसम कसा करके रह जाते और समस्त धर्मों को जानने वाली परम बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था, सुनती रहती थी, बड़ी धैर्यवती थी। कभी कभी वे गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र से कहती, सुनो भीमसेन के वचन सुनो, मनुष्य देखता है कि अभी जो कुछ है वही दिन सदा रहेंगे, आपने कभी विचार नहीं किया कि आज मेरे हाथ में राज्य है, सत्ता है, अधिकार है, ये मेरे पास सदा नहीं रहेगी, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। हे महाराज, भीमसेन को सबसे बड़ा दुख किस बात का है आपने पहचाना? द्रौपदी का भरी सभा में जो अपमान हुआ उसमें आप मौन रहे, पुत्रों का पक्ष लिए, वो भीमसेन से सहन नहीं हो रहा है। उसी सभा के अंदर भीमसेन ने सो को मारने की प्रतिज्ञा की थी। 15 वर्ष हो गए हैं अपने को यहां अपने पुत्रों के वियोग में, और भीमसेन के ये वचन रूपी बाण कलेजे में कभी न कभी दर्द करते ही हैं। उस दिन बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई, धृतराष्ट्र को इतना बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि इस दुख को यदि मैं प्रकट करूंगा तो युधिष्ठिर के मन में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि भीमसेन को छोड़कर कोई भी धृतराष्ट्र के प्रतिकूल नहीं चलता था, कोई बोलता भी नहीं था। चाहे यशस्विनी द्रौपदी भी क्यों न हो, वो भी उनके मन के अनुकूल बर्ताव करती। गांधारी की द्रौपदी खूब सेवा करती, कभी कठोर वचन नहीं सुनाए। एक बार धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका सबका सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ, ये सब मेरे अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी हुई थी, वह अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने उसे कौरवों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें मैंने अनसुनी कर दी, क्योंकि मेरी बुद्धि पुत्र के स्नेह से मारी गई थी। उस अवस्था में मनुष्य पुरुषों ने मुझे बहुत हितकारक बातें सुनाई कि दुष्ट पापी दुर्योधन को अपने मंत्रियों सहित मार डालो या देश निकाला दे दो, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गांधारी ने मुझे बहुत समझाया, किंतु मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटाने में हम लोग नाराज हो गए। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूले हैं, मेरे हृदय में संचित हुई पड़ी है, समय समय पर कांटे के समान कसक रही है। आज 15 वर्षों के बाद मेरी अंदर की आंख खुली है। मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी 4थे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूं। इस बात को केवल गांधारी जानती है और लोगों को पता नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूं, नहीं करता। युधिष्ठिर के भाई से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुशासन पर आसीन हो जप में लगा रहता हूं, भूमि पर शयन करता हूं। यशस्विनी गांधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे तथा उसके अनुसार उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किए हैं। मुझे यदि दुख है तो मेरे किए हुए पर है। अपने सुहृदों से ऐसी बात कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी ये बात सुनो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहां बड़े सुख से दिन बिताए, बड़े बड़े दान दिए, अनेकों प्रकार के मैंने बड़े बड़े श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान किए और अनेकों बार मैंने पुण्य के दूसरे काम भी किए। क्या कहूं, द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो तुम्हें मुझे और मेरी गांधारी के हित के लिए एक बड़ा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है। मैं तुम्हारी उस विषय में अनुमति चाहता हूं। तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो मैं वन में चला जाऊं, वहां गांधारी के साथ चीर और वलकल वस्त्र धारण करके तुम्हें यहां आशीर्वाद देता हुआ निवास करूं, वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूं तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूं। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे। मुझे अनुमति दो, क्योंकि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर, प्रजा का एक नागरिक होने के नाते मैं तुमसे अनुमति मांगता हूं, पिता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आप 4थे दिन या 8वें दिन भोजन करते थे, हमें तो पता ही नहीं चला, और अब आप यहां से जाने की बात करते हैं। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है, मैं इतना प्रमादी हो गया, राज्य में इतना आसक्त हो गया, कि आप कब खाते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं। आज तक मुझे और मेरे भाइयों को पता नहीं लगा कि आप महल के अंदर रहते हुए दुख से पीड़ित हैं और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन करते हैं। आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में डाले रखा, क्योंकि मैंने पहले मुझे ही विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूं, आप आज तक दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ है, जबकि मेरे बड़े माँ, जबकि मेरे बड़े पिता इतना कष्ट उठा रहे हैं। हाय, धिक्कार है मुझे। आप ही मेरे पिता, माता, परम गुरु, सर्वस्व आप हैं। आपसे विलग होकर हम कहां रहेंगे। ये युयुत्सु आपका औरस पुत्र है, इनको या किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए, अथवा स्वयं राज सिंहासन पर पूर्व के भांति विराजमान होइए। वन में तो कोई अपराधी ही जाता है, राज हस्तिनापुर में सबसे बड़ा अपराधी आपका पुत्र ये युधिष्ठिर है। हे पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूं, अब आप मुझे पुनः मत जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हूं, प्रजा तो मैं हूं, मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला एक सेवक हूं, मैं आपको क्या अनुमति दे सकता हूं। दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है, ये तो जो कुछ होनार थी वो हुई है। आपके लिए जैसे दुर्योधन आदि पुत्र थे उसी प्रकार हम हैं। मेरे बुद्धि में, मेरे विचार में गांधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूं, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज, ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं, मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूं, हमसे भूल हुई उसके लिए आप क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए, हम सब आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मैं आपकी मानसिक चिंताओं को दूर कर दूंगा। धृतराष्ट्र बोले, बेटा अब मेरा मन तपस्या की ओर खींच रहा है, जीवन की अंतिम अवस्था है, वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। तुम्हारे पिता भी तो वन में ही गए थे, मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका। दुर्योधन आदि के मरने के बाद 15 वर्ष में आ रहा हूं, यदि मेरे मन में किसी प्रकार आप लोगों से नाराजगी होती या मैं आपको अपयश की आग में जलाने वाला होता तो मैं तत्काल यहां से निकल जाता। मैं यहां इसीलिए रहा कि तुम्हारे हृदय को दुख न हो। तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की है, अब मेरी वृद्धावस्था हो गई, अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही होगी, मैं जाना चाहता हूं। धृतराष्ट्र की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूं। एक तो मेरी अधिक अवस्था हो गई, दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से अब मेरा जी घबरा रहा है, मुंह सूख रहा है, मैं जाना चाहता हूं। इतना कहते कहते सहसा गांधारी का सहारा लेकर वे निर्जीव की भांति सो गए। यह देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। कहने लगे, आओ, जिनमें हजारों हाथियों का बल था वे राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। इतना बल, भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा को चूर्ण कर डाला। वे महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं। धिक्कार है मुझे, मैं घोर पापी निकला, लोग मुझे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। धिक्कार मेरी बुद्धि को, धिक्कार मेरी विद्या को, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गांधारी भोजन नहीं करते तो मैं भी इनके भांति अब उपवास करूंगा। यह कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया। धर्मराज के हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर होने लगी और होश आया। बड़े प्रेम से कहने लगे, पांडुनंदन, तुम मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरते जाओ। युधिष्ठिर, तुम मुझे छाती से लगा लो, तुम्हारे हाथ के स्पर्श से बड़े आनंद की वर्षा हो रही है, तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे मन में मानो मेरे शरीर में मानो प्राण घुसते जा रहे हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर चार दिनों से मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पा रही। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे परिश्रम पड़ा है, इसलिए अचेत हो गया था। तुम्हारे हाथ के स्पर्श से मानो मेरे शरीर पर और मन पर अमृत की वर्षा हो गई है, इससे मुझे नया जीवन मिला है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े आदर और स्नेह के साथ उनके सारे अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा और धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण आ गए। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघने लगे। यह करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुख मग्न हो विदुर आदि सब लोग तर 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 रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई चारों तरफ से उनको घेर कर खड़ी हो गई। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अब अधिक कष्ट में मत डालो। पुत्र, मेरी बात मानो, मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्थ भाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया था और अपने शोकाश्रुओं को अपने अंदर ही अंदर रोक करके कहा, पिताजी आप नरश्रेष्ठ हैं, मुझे इस राज्य की तथा जीवन की इच्छा नहीं है, जिस तरह भी आपका प्रिय हो वो मैं करना चाहता हूं। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हूं तो मेरी प्रार्थना से इस समय आप भोजन कीजिए। आपको भूखा देखकर मेरे अंदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, आगे की बात आगे सोचूंगा, अभी आप भोजन कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो मैं अभी भोजन कर लूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि अकस्मात वहां वेदव्यास जी आ पहुंचे और आते ही उन्होंने कहना चालू किया, युधिष्ठिर महातेजस्वी धृतराष्ट्र इस समय जो कुछ कह रहे हैं वो सब बिना सोचे समझे करो, इसके लिए कुछ विचार मत करो। ये बूढ़े हैं, विशेषता इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि अभी इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सहेंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है, इसलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहती चली आ रही है। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूं, मेरी बात सुनो, राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहां रहने से इनकी व्यर्थ ही मृत्यु हो जाएगी, वन में जाने पर ये सब प्रकार की बातें भूल जाएंगे। युधिष्ठिर इनको कल्याण करने का मौका दो, परिवार के मोह को हटाओ, प्राचीन राजर्षियों के समान वन में रहते हुए अपना देह त्याग करें, तपस्या करें, पश्चाताप करें और उसी से इनका शरीर छूटे, ये इनके जीवन का अंतिम भाग है, इनको वन में जाने दीजिए, वन ही इनका परम आश्रय है। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसे निदड़क शब्दों को युधिष्ठिर जी ने सुना और उत्तर दिया, हे भगवान आप ही मेरे माननीय और आप ही हम लोगों के परम गुरु हैं, इस राज्य और कुल के परम आधार आप हैं, मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं, इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूं। धर्म तो यही कहता है कि पुत्र ही पिता का आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः कहा, तो फिर महाबाहो देरी क्या है, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए, अंतिम अवस्था को पहुंच गए, इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें, तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। युधिष्ठिर राजर्षियों का परम धर्म यही है कि या तो युद्ध में प्राण त्यागें अथवा वन में परमात्मा का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हों। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की थी, इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए, पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भलीभांति पालन किया, नाना प्रकार का धन दान दिया, अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत इनकी सेवा की और गांधारी देवी की आराधना की, अब इनके तपस्या करने का समय है। युधिष्ठिर तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दो, तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यों कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और राजा युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आप सबकी आज्ञा है वन में पधारें। जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वेदव्यास जी अपने आश्रम पर चले गए। भगवान वेदव्यास जी के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रतापूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है तथा आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचारी विदुर युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे निस्संदेह मैं वैसा ही करूंगा, किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हुआ निवेदन करता हूं, पहले आप भोजन कर लीजिए फिर आश्रम को जाइए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनकी चलने की शक्ति क्षीण हो गई, बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर संजय और कृपाचार्य थे। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वान्न काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गांधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया, भोजन कर लिया सबने। उनके भोजन करने के बाद विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया, फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में देख धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन इस आठ अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना, बड़ी सावधानी के साथ संचालन करना, राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। सदा विद्या में बड़े चढ़े विद्वानों का संग करना, अच्छे अच्छे महापुरुषों का संग करना, वे जो कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना, बिना विचारे उनकी आज्ञा का पालन करना, सवेरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करना, आवश्यकता अनुसार उनसे अपने कर्तव्य के विषय में बार बार पूछते रहना, अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़े को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करना। ऐसा करने से वे संचित धन के भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामहों के समान समय से काम देखते आ रहे हों, तथा जो बाहर और भीतर से शुद्ध संयमी और पुण्य कर्म करने वाले तथा पवित्र हों, ऐसे मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त रखना। जिनकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते नहीं हों, ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत होना चाहिए। बीच में सब और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं रहे। नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए। चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र माने मशीन या तोप लगाए रखनी चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह से मालूम हो, उन्हें ही इनकी रक्षा में रखना चाहिए। आहार और विहार करने वाले, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करना। क्या पता किस माला में क्या वस्तु हो, क्या पता जहां तुम सो रहे हो वहां पर कौन सी चीज कैसी रख दी गई हो, जिस आसन पर बैठे हो उसके नीचे क्या हो, भली भांति जांच कर लेना। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र तथा वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में निपुण हो, विनयशील हो, धार्मिक हो, अर्थ में कुशल हो, स्वभाव से सरल हो, बुद्धि से गंभीरता से सोचने वाले हो, उनके साथ तुम गूढ़ विषय पर विचार करना। किंतु अधिक लोगों के साथ लेकर देर तक मंत्रणा कभी मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को लेकर बैठोगे तो एक निर्णय पर पहुंचना बड़ा भारी पड़ जाएगा। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या फिर एकदम खुले मैदान में जाकर उनके साथ विचार विमर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ खंखाड़ न हो। ऐसे जंगल में बैठकर कोई ऊंचा मिट्टी का टीला हो और आसपास में कोई वृक्ष न हो, वहां पर बैठकर के मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना, परंतु वह भी रात्रि के समय मत करना। क्या पता इन वृक्षों के पीछे, टीलों के पीछे कोई गुप्तचर आपकी रहस्यमय बात सुन सकता है। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख, पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरे पर प्रकट हो जाने से राजाओं की बड़ी हानि होती है। उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। जो काम आगे करने वाले हो उस काम का यदि भेद पहले ही खुल जाए तो दोष पैदा होते हैं। तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष कोई भी बात करो उसका दोषात्मक परिणाम क्या होगा ये पहले ही बतला देना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध या अशुद्ध, इस बात की सदा नगरों में चेष्टा रखते रहना। न्याय करने का काम सदा ऐसे पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र हो, संतोषी हो, हितेशी हो, जो उत्कोच करने वाले न हो, अर्थात रिश्वतखोर न हो। गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। एक बात और सावधानी से सुनो, गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखना। ये भी राजनीति का एक गहन विषय है। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझकर उनके दंड देवें। यदि कोई दंड नहीं देंगे तो प्रजा में वे अपराध बढ़ जाएंगे। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्री का अपहरण करते हो, अथवा जिनकी पराई स्त्री पर दुर्भावना हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, तो जो झूठाई फैसला देने वाले हो, कटुवादी, लोभी, दूसरों का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड एवं प्रजा दंड अवश्य देना चाहिए। ऐसे आदमी कभी विश्वास के योग्य नहीं होते। प्रातःकाल उठकर नित्य नियम की निवृत्ति के बाद पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हों। उसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सैनिकों का हर्ष और उत्साह कैसे बढ़ता हो उस बात पर विचार करना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलकर मिलने का सबसे बढ़िया समय संध्या का काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। आज मुझे सारे दिन क्या करना है। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन नहीं करना चाहिए। पहले काम देखकर फिर किसी को नौकरी देना चाहिए। जो अपने आश्रय में रहते हो किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या न हो उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, शूरवीर हो, क्लेश सहन करने में समर्थ हो, हितेशी हो, स्वामी भक्त हो, पुरुषार्थी हो, शरीर से खूब बढ़िया बलवान हो, उसको सेनापति बनाना चाहिए। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम उनके भरण पोषण का प्रबंध करो। अपनी और शत्रु की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखो। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्यों में विशेष कुशल और हितेशी हों उन्हें पूरी आजीविका देकर अपने ही देश में रखो। बुद्धिमान राजाओं को उचित है कि वे गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करें। युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रुओं के उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। चार प्रकार के शत्रु समुदाय, छह प्रकार के आततायी, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन बारह प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग, सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है। अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपर्युक्त बारह प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्रियों के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीति के आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राज्य की रक्षा के 6 उपायों का वर्णन किया गया है। राजा को चाहिए कि वे अपनी वृद्धि, क्षय और स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे। जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल पड़े उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसको जीतने का उद्योग करे। किंतु जिस समय शत्रु प्रबल और अपना पक्ष दुर्बल हो उस समय शत्रु के साथ संधि करनी चाहिए। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य है उसका भली भांति विचार करना चाहिए। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करनी चाहिए। क्या धृतराष्ट्र को राजनीति का ज्ञान था? शत्रु को कम उपज वाली जमीन देओ, बंजर, ऊसर भूमि ये देओ, थोड़ा सा सोना देओ और जस्ता है, पीतल है ये खूब देओ, और दुर्बल मित्र देओ उसके साथ संधि करो। और यदि शत्रु पक्ष की ओर से संधि का प्रस्ताव आए तो संधि कुशल राजाओं को इससे विपरीत वस्तु अर्थात उपजाऊ भूमि लेनी चाहिए। सोना चांदी आदि ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए। अथवा प्रतिद्वंद्वी राजा के राजकुमार को ही अपने यहां जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वो भविष्य में कभी बर्ताव बिगाड़े नहीं। यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उचित उपाय और मंत्रणा के साथ राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वे अपने समीप आए हुए समस्त राजा का वध न करें। अपने सामंत राजा का वध न करें। जो समूची पृथ्वी पर विजय चाहता है वो तो कदापि हिंसा न करें। अच्छे पुरुषों से मेल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उनको दंड दें। बलवान पुरुषों को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बैंत किसी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। बैंत होता है हवा चलती नम्र हो जाता है। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे तो अपने में युद्ध की शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में चला जाए और कोश पुरवासी मनुष्य दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपाय के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके तो युद्ध के लिए टूट पड़ना चाहिए। उस दशा में यदि मृत्यु हो जाए तो हो जाने दो, वीर पुरुष की मुक्ति अवश्य होती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी ध्यान रखना चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करो, दुर्बल हो तो युद्ध छेड़ो। ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं, इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं, नाना इनके प्रकार भी नाना है। अपनी द्विविध अवस्था बलाबल की अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करो। यदि शत्रु मनस्वी और उसके सैनिक हृष्टपुष्ट संतुष्ट है तो उसके ऊपर सहसा आक्रमण नहीं करना चाहिए, उसे परास्त करने का दूसरा उपाय सोचना चाहिए। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक तो निर्बल हो, असंतुष्ट हो। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण ले लो और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए, उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्ष की त्रिविध शक्तियों पर भलीभांति विचार करना चाहिए। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल, श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना के साथ लेकर विजय लेकर लौटता है। यदि अपने में असमर्थता न हो तो युद्ध के अनुकूल मौसम न होने पर भी चढ़ाई कर दो। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पद्म तथा वज्रव्यूह बनाना चाहिए। शुक्राचार्य ने अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल सदा करते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह समय समय पर अपने अधीन रहने वाले सेवकों को, सैनिकों को पारितोषिक वितरण करे, सेना को इनाम देकर संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों को भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायों द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन बातों को ठीक ढंग से समझता है वो धर्म पूर्वक चलता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है और वो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। बेटा, इस प्रकार तुम्हें भी इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए प्रजा के लिए पूरा हित करना चाहिए। भीष्म जी, भगवान कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने जो कुछ बतलाना आवश्यक समझा उन सब बातों को मैंने समझा दिया है। इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे, स्वर्ग में भी सुख को प्राप्त होंगे। मेरे अपने जीवन का जो अनुभव, जो अध्ययन, वो मैंने तुमको सुना दिया है। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करे, दोनों का समान फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग सिधार गए, श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, विदुर और संजय आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह गया जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय जो कुछ आपने उपदेश दिया है उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा अब रहने दो, मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम हो रहा है, बस अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर गांधारी के महल में चले गए। वहां जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गांधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि वेदव्यास ने स्वयं आकर आपको वन में जाने की आज्ञा दी है और युधिष्ठिर को भी अनुमति देने के लिए कहा है। व्यास जी की आज्ञा से युधिष्ठिर की अनुमति भी आपको मिल गई है, अब आप किस दिन वन को चलेंगे? अब आप क्यों देरी करते हो? जब चलना है तो फिर चलना है। धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, अब वन चलने में अधिक समय नहीं है। मैं चाहता हूं प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ मैं धन दान कर लूं और उसके बाद फिर आगे वन की यात्रा करूं। इसलिए थोड़े से समय की प्रतीक्षा करो। कल फिर आगे की कथा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।